राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 नवंबर सन 1991 को
सिंथल में हुआ। राम।
बहुत वर्ष पहले योग वशिष्ठ पढ़ा था, कोई 7 वर्ष हो गया होगा, मेरी याद होती तो उसमें आया है अजो सो इंद्रेश सही वकाला आज उत्सव है, आज अमुक त्योहार है, आज अमुक बार है, आज अमुक मिला है, आज अमुक दर्शन को गए हैं, आज अमुक देखा है, ऐसे जो बात होती है ना, तो मनुष्यों की इस तरफ ही वृत्ति रहती है। ऐसा विचार नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसका अंश हूँ, क्या हूँ, सब से इस तरफ वृत्ति नहीं जाती, विशेष समय इन बातों में चल जाता है, इतनी दृष्टि रहती है। तो इधर दृष्टि नहीं रखना ये मेरा तात्पर्य नहीं है, परंतु तो खास दृष्टि रखनी है अपने स्वरूप की तरफ, परमात्मा की स्वरूप की तरफ। ये तो व्यवहार में करना ही है। जैसे अब दिवाली आ गई, तो कल दिवाली थी, आज दिवाली का राम राम है, राम राम एक दिन जाकर मिलते हैं, तो ये मेरे नाच मिलना बहुत ठीक है, फिर राम राम आ गया। परंतु इसमें ही लग जाना, केवल त्योहार में लग जाना है, परमात्मा तत्व को भूल जाना है, ये गलती है। तो ये बात आई वहां युग से, इसमें आज उत्सव आ गया, त्योहार आ गया, महावीर आ गया, दिवाली आ गई, अक्षय तृतीय आ गई, आज अमुक तिथि आ गई, आज सोमवार आ गया, आज संत आ गए, आज वो अनुग आदमी आ गया, आज अनुग लड़का पैदा हो गया, आज अनु का ब्याह हो गया, आज आज अनु का गौना हो गया, अब का ऐसा हो गया, अभी बच्ची के बच्चा हो गया, उसकी हो गया। तो इस तरह भी इस तरह विचार होते हैं, पर तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना और क्या करना है, इसको भूला दिया, कोरा ऊपर ऊपर की बातों में रह गया। तो ऊपर की बात है ये भी करनी पड़ी, अपनी जगह करनी है। फूल शरीर की प्रधानता को देकर और सूक्ष्म और कारण शरीरों की बात भी भूल गया, कारण शरीरों की बात ही शरीरों से अतीत जो परमात्मा तत्व है उस तत्व को जानना खास काम था ये मनुष्य शरीर का। अब मनुष्य शरीर जान सकता है इस तत्व के जानने में, जितना मनुष्य शरीर का अधिकार है उतना देवताओं का भी नहीं है। देवता ऊंचे हैं, हमारे शरीर है ये गंदे शरीर है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और गंदगी गंदगी पैदा होती है, गंदगी चीजें इकट्ठी हुई है, हार है, मांस है, खून है, मज्जा है, क्या है, चमड़ा है, ये इकट्ठी हुई है, भीतर आंतें भरी है जिनमें मलमूत्र पैदा होता है, इसे बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो मल बना देगी ये मशीन, और बढ़िया बढ़िया गंगा जल, जमुना का जल, महान पवित्र जल दे दो, पेशाब बना देगी। तो अशुद्ध बनाने की अशुद्ध फैक्ट्री है मनी ने इस थोड़े पर भी चीज कोई बढ़िया सुगंधदार पवित्र निर्मल रही है। सब भी ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब इसकी ही प्रधानता लेकर काम करते हैं, शरीर को ठीक रखना, शरीर को ठीक रखना, ठीक रख सकोगे नहीं। इस शरीर के भरोसे रह करके परमात्मा तत्व से वंचित रह जाना बहुत बड़ी गलती की बात है। तो ये सब काम करना है, परंतु इसमें उलझ जाना नहीं है। पूरा इसमें उलझ गए तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। ये मनुष्य शरीर है, इसके लिए देवता भी नहीं है, और शरीर क्या होगा बेचारा। पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, दूब है, पहाड़ है, ये सब प्राणी है, ये सब जीव है, ये शरीरधारी है, स्थावर और जंगम है, वृक्ष है, ये शरीरधारी है, ये स्थिर रहने वाला एक जगह रहने वाला है, मनुष्य पशु पक्षी ये जंगम है, चलने फिरने वाला है, पर जीव ये है, जीव ये है। जीवों में देवताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा है, हमारे पृथ्वी पृथ्वी प्रधान है, गंदगी है, देवताओं का तेजस्व तो प्रधान है, तेज सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, बिजली है, ये जो है तेज, उस तेजस्व तो प्रधान है शरीर है। अपने सूर्य देखने वाले में सोना है, हीरा है, रतन है, ये तेज तत्व है तो पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के पत्थर में जो है, पर इसमें तेज तत्व की प्रधानता है, और देवताओं में बिल्कुल तेज तत्व की प्रधानता है। हम लोगों के शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, जैसे मैले से भरा हुआ सुअर हो और हमारे पास आ गए तो कैसा लगता है, सूर्य को खाता है मैला, वही लगा हुआ हो पास में तो यू करते छू जाओ तो स्नान करो, भाई कपड़ा बदलो, हाथ धो, क्या कर रहे छू जाओ, जैसे उस वो दुर्गंधी आती है हमारे को, ऐसे हम लोगों के इन शरीरों से देवताओं को दुर्गंधी आती है। कहा कि रामायण में क्षुद्र पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पृथ्वी रचित वायु आकाश पंच रचित अधम शरीरा, पांचों बचा हुआ है, अधम शरीर अधम बताया है। उत्तरकांड में सबसे सुंदर सबसे उत्तम मानुष ही मनुष्य को देह को उत्तम बताया, जीव चरा चल जाते ही फिर वो मानुष हो गए, और देवी देवाना भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ, दोनों बताइए, अदम सही आया है और देवताओं को भी दुर्लभ है। ये आप ऐसे रूप से नित्य कृष्ण काम से ना भगवान के स्वरूप को देवता चाहते हैं, और देवता इस मानव शरीर को भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, हम अपना कल्याण कर रहे हैं, ऐसे देवता भी चाहते हैं, ऐसा शरीर है ये। चीजों में बात कैसे बैठे जी, अधम भी है और उत्तम भी है, तो इसमें उत्तम क्या है, उत्तम इसमें एक विलक्षण है विवेक, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, ये विवेक इसमें विलक्षण है। विवेक का निरादर करे तो पशुओं से भी बहुत नीचा है, पशु शरीर अच्छे है, पशु शरीरों में पापों का भोग होता है, तो पशु शरीर तो जो जो भोगते हैं पशु शरीर, जो जो हम ऊंचे उठते चले जाते हैं। रामायण में आया है बड़ बल बास नरक करता था, नरक में जाना बड़ा अच्छा है, दुष्ट संग जन दे ही विधाता, विधाता कभी दुष्ट संग ना दे, नरकों में अच्छा है पर दूसरा कुसंग है वो बहुत नीचा। तो नरकों का अच्छा क्या है कि नरकों में पापों का भोग होता है, तो पापों का भोग होता है तो शुद्ध होता है ना। जितने पाप हमारे भोगे गए उतने पाप नष्ट हो गए, तो पाप नष्ट हो गए तो शुद्ध हो गए नहीं, अशुद्धि मिट गई इतनी। तो नरकों में जाने से तो शुद्धि होती है, दुष्टों के संग से नरकों की तैयारी अशुद्धि होती है। दुष्टों के संग से जो भगवान ने का भजन नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की साधना नहीं करते, ऐसे दुष्ट पुरुष है विपरीत चलते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात यही रात दिन करते हैं, पैसा पैसा केवल कमाते हैं और भजन स्मरण नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते। कब मनुष्य बन जन्म लिया है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इधर ध्यान ही नहीं, इधर ख्याल ही नहीं है, इधर होश ही नहीं है, बड़ा भाई नुकसान कर रहे हैं। मानुष ही प्राप्त किया है इसका लाभ लेना चाहिए, लाभ न लेकर के हानि कर रहे हैं, पापों को बटोर रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों के संग की अपेक्षा नरक बहुत बढ़िया चीज है। तो नरक में दुख तो जाते हैं परंतु शुद्धि होती है। जैसे कपड़े को नांद में उबाल करके फिर पसाता जाए तो कष्ट तो होता है पर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, मैल सब निकल जाता है। इसलिए नरकों में दुख होता है कष्ट होता है उससे उसका मैल निकल जाता है, वो एकदम शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो नरकों में तो निर्मलता होती है, दुष्टों के संग से मैलापन होता है, कष्ट भोगते हैं, कष्ट से दुख का नाश होता है, पापों का नाश होता है। वो जितना भोग दिया जाता है उतनी बारी निकल गई, उतनी शुद्धि आ गई। तो नरकों में रहना है, कष्ट में रहना है, बुखार का आ जाना है, विशेषता से ये आ जाना है, ये शुद्धि करने वाली चीज है। 100 रुपया कोई मांगता हो और वो आपको देना पड़े तो आपके पास में 1000 रुपया है, 100 देंगे तो 900 ही जाएगी, तो घाटा पड़ गया, 100 का घाटा पड़ गया। पर घाटा तो 100 का पड़ा, मैंने कर्जा उतर गया ना, कर्जा का ब्याज चढ़ता था, कर्जा चढ़ता था, वो समाप्त हो गया, कितना बड़ा अच्छा हुआ। 100 रुपयों का नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ है, कर्जा उतर गया, बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बात हुई है। इसे से पाप भोग दिया जाए तो पापों की कर्जा उतर गया, शुद्धि आ गई, निर्मलता आ गई, बड़ी अच्छी बात है। और भजन स्मरण नहीं करते, दुष्टता में समय बर्बाद करते थे, काम उपभोग काम उपभोग परमा, संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उसे सुख भोगना, ये दो चीज बहुत घातक है। संग्रह में रात दिन लगे रहे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, कभी गए महाराज आजकल 27 काम नहीं चलता। और 27 काम नहीं चलता पर इसका नतीजा क्या होगा, मनुष्य शरीर है, विवेक प्रदान है, विवेक में नतीजे की तरफ ध्यान होता है, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम की तरफ न सोच करके देखे और रुपया कमाने में भोग भोगने में लगे हो, सोचो तो सही किधर जा रहे हो, रास्ता किधर जा रहा है, आप जा रहे हो किधर, वो कब सोचोगे इसका पता नहीं है। झूठ कपट बेईमानी से धन कमाया और धन कमाकर क्या किया, भोग भोगा, मान बढ़ाई इसके लिए सही खर्च कर दिया, सरासरी के ब्याह के 5-5-7-7 लाख रूपये खर्च कर दिए, दान पुण्य करने को दे गई नहीं, बुद्धि ऊंची हो गई, सज्जनों कृपा रखो, जय थोड़ी सावधान हो, कि समय कितना जा रहा है, कीमती समय है जिसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उत्तम समय है। वो पापों के बुटोले में जा रहा है, पापों के संग्रह करने में, झूठ कपट में, कई मानी में, धोखेबाजी में, विश्वासघात में, दूसरों को दुख देने में, दूसरों को कष्ट देने में, अपमान करने में, निंदा करने से जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है, कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। एक कोई संत थे, वो दूसरे गांव जा रहे थे, तो गांव जाते थे तो तीन आदमी और साथ में हो गए, साथी हो गए। एक शिकार को जा रहा था जानवरों को मारने के लिए, जानवर को मार कर ला कर उसका मांस बेच कर गया, जीविका करे बधिक बहेरिया, एक तो वो था। और एक संत थे, एक राजपुत्र था, राजकुमार वहां के गांव का मालिक का उसका लड़का पुत्र था, वो भी शिकार के लिए जा रहा था। एक तपस्वी का पुत्र था, तपस्या करते ही भजन स्मरण करते सिंह को तपाते, भूखा रहना, घाम सहना, शीत सहना, वर्षा सहना, तप करना, वो तपस्वी था। चार आदमी हो गए, एक तपस्वी, एक बहेलिया जीव घातक, एक राजपूत, एक संत, सात हो गए। रस्ते में सारा सोते चलते चलते प्यास लगी, प्यास लगी तो भाई क्या करे, प्यास लगी जल में, जल तो यहाँ आने रास्ते में एक संत की कुटिया थी, वो दिखाई दी, उसको पहुंचे भी संतों को वहां पानी पी रह गई, संतों का जल रहता तो सब तो मन से जा रहे थे, वो रहता ही है, वहां पिया ही करते हैं, एक आदमी पिया ही करते, जल पी लो कुछ नहीं तो जल पी लो, कोई जल पीने को गए तो जल किया और नमस्कार किया तो आशीर्वाद दिया, वहां रहने वाले संत ने आशीर्वाद दिया। तो राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र तुम तो जीते रहो। और वो तपस्वी था ऋषि बुजुर्ग, कह रहे बेटा तुम मत जियो, तुम मर जाओ। राजपुत्र चिरंजीव मां जीव ऋषि पुत्र का, संत महात्मा से होगा जी होगा हमारे वहां साधु, तुम जियो चाहे मरो, और ब्याज मा जीव मा मरे, ब्याज ना जीवे ना मरे, ना जीने का कहा ना मरने का, ना जियो ना मरो। तो उन्होंने पूछा कि महाराज संत तो समदर्शी होते हैं, सबके ऊपर एक कृपा करते हैं, आप आशीर्वाद नहीं क्या करें, कर दिया आशीर्वाद भी एक समान नहीं दे सके, जीते रहो कल्याण जा कुछ उधर आशीर्वाद भी चार तरह का दिया। तो संत ने कहा मैं वो संतों की बात कहूं, मैं संतों की सुनी हुई है, संतों की पूरी पूरी है, उसी की हुई वही बात मैंने कही है। इसका क्या अर्थ हुआ, कहते सुखी रहो, कहते हैं ना सुखी रहो, ये आशीर्वाद देते महाराज वगैरह का पंडित जी महाराज, सुखी रहो, सुखी रहो, कहते हैं ना हाँ मैं सुखी, सुखी रहने की बात बताई। राजपुत्र है वो चिरंजीव, तो चिरंजीव रहो मानो सुखी रहोगे, मरोगे तो दुख होगा। सुनिए राजेश्वरी भोगेश्वरी फिर नरकेश्वरी, राज करता है अन्याय करता है फिर नरक में जाएगा, तू जीता रहे जीते दस्तारे जाता नरक तैयार है अभी, अन्याय करता है लोगों को लूटता है लोगों को ऊपर ऐसे करता है जल्दी बना, इस बात से तू तो जीते रहो भाई जीते रहो। अरे तपस्वी है वो सही तकलीफ तपस्या कर रहा है, तुम मत जियो, जियो तो दुख पाते करते, मर जाओ तो राज घराने में किसी के जन्म हो गए तो सुख पाओगे, तपस्या का फल है सुख मिलेगा, तुम जियो मत। राजपुत्र है चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का, और संत को देगा तो कहते तुम जियो तो मरो, तुम्हारी मर्जी है करो, जीना भी ठीक है मरना भी ठीक है। और ब्याज की तरफ देगा अब क्या कहूँ, जीना ठीक नहीं मरना ठीक नहीं करे तो कोई संत के लिए जीना मांग दोनों के कि महाराज संत है यहाँ पर भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं, अगर मर जाए तो भगवान धाम में जाएंगे, जीवे तो मौज है मरती मौज है दोनों में आनंद ही आनंद है। इस बार जीवो चाहे मरो तुम सुखी और सुखी रहेंगे ये सभी। अब क्या दिमागी यहाँ तो खाने को रोटी नहीं और रात में जीवो को मारते हैं जैसे रामायण माया ने पाप कर तो निशिवा चल जाए, पाप करते हुए तो रात दिन बीतते हैं, रात में ही पाप दिन में ही पाप सुबह ही पाप दिन में शमशान को भी तो पाप कर तो निशिवा चल जाए नहीं कटिपट नहीं केट अगाई लज्जा निवार नहीं हुआ तो कपड़ा नहीं पेट भरने के लिए अल नहीं दशा ये है दुख पा रहे है और पाप रात दिन करते हैं ढाप करके रोटी नहीं खा सकते नहीं कटिपट लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं नहीं पेट वाला नहीं पाप ऐसी। अब उसको जीवे तो क्या कहें अरे मरे तो क्या कहें जीवे तो दुख पा रहा है मरे तो दुख पा रहा है दुखी पाएगा अगर महान पाप करता है लोगों का नुकसान करता है जीवों को मारता है तो उसको नर्क होंगे तो मरने पर भी दुख है जीने भी दुख है। तो सिद्ध क्या हुआ जीवन ऐसा बिताना चाहिए तो यहाँ भी सुख रहे वहाँ भी सुख रहे यहाँ है वहाँ नहीं वहाँ है यहाँ नहीं वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं वहाँ भी है यहाँ भी है क्या बात हुई तो बढ़िया तो वो यहाँ भी है वहाँ भी मौज है। तो सदगुरु सदाचार करे भजन स्मरण करे दान पुण्य करे उपकार करे सेवा करे सबकी और शांति से रहे तो चित्त में शांति रहेगी और आगाड़ी भी अच्छा काम होगा भगवत प्राप्ति होगी कल्याण होगा उद्धार होगा। तो सब तरह से फायदे की बात है तो मधुर स्मरण करना है सत्संग करना है स्वाध्याय करना है दान पुण्य करना है उपकार करना है दूसरों का हित करना है फिर प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हित ही रहता यानी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो कितनी बढ़िया बात है। तो अच्छे अच्छे काम करो भगवान को याद करो उपकार करो सेवा करो सुख पहुंचाओ हित करो तो इससे यहाँ भी शांति आएगी मनुष्य के हृदय में कुटिलता आती है ना तो दुख शुरू हो जाता है। हमने कुत्तों को देखा है कुत्तों कुत्ते होते हैं गली में जाते हैं तो कई कुत्ते होते हैं सोते रहते हैं आंखों वाले थे मैं सो जाते हैं सोते रहते हैं आराम से आदमी आते जाते रहते हैं और कोई कोई कुत्ता भूखता है भूसता है वो आए तो भूसता है भाव भाव करके नजीक आता है फिर भाग दूर से जाता है फिर आता है उसकी कर्तव्य मच जाती है दुख पाता है क्यों पाता है दुख क्यों भूखता है उसको दुख देने के लिए विचार होता है तो जहाँ दूसरे को दुख देने का विचार हुआ वही दुख शुरू हो ही गया उसको वो शांति से सो नहीं सकता बैठ नहीं सकता ठहर नहीं सकता खड़ा नहीं रह सकता दूसरों के पास में आता है फिर भागता है फिर पास में आता है फिर भागता है। अब बोलो कुत्ता हो गया तो स्वभाव बिगड़ा हुआ तो दुख पाता है कुत्ता हो गया स्वभाव सुधरा है तो सुख पाता है। तो मनुष्य शरीर में अगर स्वभाव सुख बनाओ ये अपने हाथ की बात धन कमा लेना हाथ की बात नहीं है पाप कर मिसीवा सुन जाए रात दिन पाप करते हैं अब लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं पेट पूछने के लिए अन्न नहीं ये दशा होती है। तो भाई अच्छे काम में लगो उत्तम काम में लगो लोग और परलोक सब सुधर जाए अपने अपने हाथ है मन स्वाद हाँ तो भाई अपने अपने हाथ है अपने हाथ की बात है धन कमा कर कितना कर लोगे गरीब आदमी है लाख रुपए एक साथ में गिनने को नहीं मिले देखने को नहीं मिले समझे लाख नाम रोजिनल ले सकते हैं, रेजिनल लेंगे तो नाम एक रुपये से रहेगा नहीं, लाख रुपये कोटि एक साथ चलेगी नहीं, परंतु यार है उनको तो करते ही इकट्ठा, साथ में चलते वो धन कमाते ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा और वो किसको भोगना पड़ेगा। अवसान होना चाहिए ना, ऐसे शरीर बर्बाद कर दोगे तो दशा क्या होगी, अंत में क्या होगा, कहाँ जाओगे। तो तुलसी स्वयं चतुर है जो राम भजन लोरे, चतुर होशियार समझदार वही है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, उसमें लीन हुआ है, वो चतुर है, होशियार है, समझदार है, विवेकी है, अच्छा है। पर धन पर मन हरण को पेशे अभी परवीन, दूसरे का धन हरने में, दूसरे का मन हरने में बेचो भी बड़ी होशियार होती है, खर्च करती नहीं कोड़ी और पैसा कमाने से हजार रुपया कमा लेती है, मन को भी खींच लेती है, शरीर को धन को ही खींच लेती है। तो दूसरों को मन को खींच लिया, दूसरे धन को खींच लिया, इसमें बड़ी बात हो गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि पैसा का दर्जा हो जाएगा। तो पैसा का दर्जा पाने के लिए मानव शरीर है, पर धन पर मन हरण को वैसा भी परवीन, वो भी बड़ी होशियार होती है, वही अगर काम किया तो बहुत नुकसान कर दिया ना। तो अपना तो काम ठीक होना चाहिए ना, वैसा अगर जमाना तो वही अपना करना है, अपना तो भगवान का भजन करना है, यहाँ भी है वहाँ भी है, जीव अमर जीव तो ही भजन सुमन करे, उपकार करे, हित करे, सेवा करे, दुनिया को सुख पहुँचावे, तो सुख पहुँचाने वाला सुखी रहता है, दुख पहुँचाना दुखी रहता है, तो यहाँ भी ठीक है और मर के जाएगा तो भी ठीक है। तो जीव हुआ हमारे वो साधु फिर श्यालों चलेगा विश्वास श्यालोंगी, परंतु जिन चार तरह का आशीर्वाद मिला इसमें तत्व बताया कि एक तो यहाँ है वहाँ नहीं है, मन को लोक में नहीं है, एक यहाँ है वहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है वहाँ है, एक ऐसा यहाँ भी है वहाँ भी है, और एक ऐसा वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं। तो दोनों लोगों को भ्रष्ट कर लेना बहुत दुख की बात है। तो जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं, यहाँ भी शांति नहीं मिलती, रात्रि को सुखपूर्वक नींद नहीं ले सकते, फोन लगे थे दोनों कानों की तरफ, हेलो हेलो भाई नहीं ले सकते, आराम नहीं ले सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर सो नहीं सकते, हर पैसा हर पैसा हर पैसा लग गया है। अब उनको समझाओ कौन, कैसे समझाओ, स्वयं तो सोचते नहीं, शास्त्रों की संतों की जो असली बात तुमको दार की बात है वो सुनते नहीं, सुनते नहीं, मानते नहीं, इसे ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते, नहीं कहते हैं कि सत्संग करने वाला बर्बाद कर रहे हैं। हमारे उस मिले थे पांच सात आदमी आए इकट्ठे, वो कहा कि तुम जो नाम का प्रचार करते हो तुम्हारे हम ऐसा पूछेंगे क्यों लोगों का समय बर्बाद करते हो, दंड भरना पड़ेगा तुम्हारे को, दंड रहेंगे पूछेंगे, पूछना भाई खबर रहेंगे, इसका हिसाब दो हमारे को, इतने लोगों को घोटी कर देते हो, काम धंधा करते जिसे खराब कर देते हो। पांच सात भाई आज धमकाए मेरे को, ठीक है भाई हम तो कर देते है ऐसा ही, अब तुम्हारी मर्जी हो दंड दे दो, क्या करें। एक शहर में पांच सात आदमी भिड़े होकर के आया, पढ़े लिखे आदमी, महाराज हम सब जानते हैं, ये आप लोग उससे तो ही हम जानते हैं, बातें बनाते हैं रोटा खाते खूब मौज से आराम से भोगते लोगों को बहका रहे हो, और भाई कैसे 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 हम सब जानते हैं, हमने उपनिषद पढ़े हैं, भागवत पढ़ा है, हमने पुराण पढ़े हैं, सभी बातें पढ़ी है, ये साधु एक तो और एक ही ब्राह्मण, ये बहुत अत्याचार करते हैं, लोगों को बुलावा देते हैं कि तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है, गरीबों को संस्कार करते हैं और आप पैसा कमाते हैं, आप सूचते हैं, खूब मौज करते हैं, गरीबों को धोखा देते हैं। सुनिए, ऐसा ही हुआ है, हम जानते हैं सब। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, किसी गरीब को सुनाई? भीष्मपर्ण ने जन्मेजय को सुनाई राजा को? राजा को कथा सुनाते ऐसा मतलब कि इन खेल अपने कब्जे में करो, इधर धन्यवाद धन्यवाद आदमी और इधर राजा महाराजा और इधर ब्राह्मण साधु, ये मिल करके दुनिया का नुकसान कर दिया। बड़े भाई ने किया ऐसी दो चार बातें सुनाई, अब भीष्म भाई ने सुनाया ऐसा तो भाई किसी जन्मे से को सुनाया, किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर सुनाई कथा। उपनिषदों में आता है तो महाराज जनक ने जग किया, याग बोल के ऋषि आए, याग में ऋषि ने बात बताई, वे गुरु बने, तो राजाओं के गुरु बन गए। ये ब्राह्मण और साधु ये दोनों दुनिया का बड़ा भारी नुकसान कर दिया, बड़ा अहित कर दिया। मैंने कहा मुझे सुनो बात के सुना, हम सब जानते हैं। मैं यहाँ तक कह दिया कि मैं बात करता हूँ वो सुन लो, आपको पाप नहीं लगेगा, मेरी बात सुन लो आपके कोई नुकसान नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, सुनते रहो। क्या सुना हम सब जानते हैं, उठ चले गए, सुनी नहीं बात नहीं। ये हमारी जीती हुई बात है, अब क्या करें बताओ। तो तुम क्या सुनाते है? हम सुनाते हैं कि राजा परीक्षित को सुनाया तो राज करता था कि मरने के मरना सुनना था। परीक्षित राजा मरने वाला था, राज करे वो तो उत्पत्ति करेगा, कुछ देगा, कुछ सेवा करेगा, मरने वाला क्या देगा? भीष्मपर्ण ने सुनाया तो जन्म से कोड़ निकल आई थी, उस कोड़ी को दूर कोड़ दूर करने के लिए सुनाई। याग बल के ऋषि किया तो जने की आफत आ रही थी, ऐसा भी सुनाया तो उनकी विधि पंचायती पड़ गई, हम क्या करें। तो सुनाई तो आफत में सुनाई है, सुख ने सुनाई रुपया लिया, परिषद से रुपया लिया क्या सुखदेव जी महाराज ने? जन्म से रुपया लिया, राज लिया, को गाँव लिया, क्या लिया? ये मेरे कहने के मन में आई तो आप जो कहते हो मैं बात बताऊँ, मेरी सुनोगे नहीं? नहीं, हम सब जानते हैं, हमारे पढ़ी हुई है सब, सब कथाएं पढ़ी हुई, हम जानते हैं। कहते हैं कि मेरी बात सुन लो, आपको पाप नहीं लगेगा, आपके नुकसान नहीं होगा, मेरी सुन तो लो। कौन सुन लो, उठे गए चले ही गए, बात नहीं सुनी। कब सब जानते हैं, क्या सुना तुम्हारे से? अब ऐसी दशा है उनकी, क्या दशा होगी? आप गए आ नहीं, अब ऐसी ऐसी प्रचार कर रहे बड़े जोर से। गर्भ में रहने वाले बालकों तक शिक्षा देनी चाहिए, स्त्री को ऐसी बातें सुनानी चाहिए, वो धर्मात्मा ना हो जाए, भगवान का भगत ना हो जाए, गर्भ का बालक भी ऐसा जो हो रहा है, ऐसा पुरुषार्थ हो रहा है। तो आप लोग किस तरह से आ गए, इसलिए आप बेकाम आए हुए हो, साधु ब्राह्मण है बेकाने वाले, बेकाम आ गया, बर्फी डाल दिया। मेरे तो समझते हैं इनको घातक समझते हैं, बहुत अपराध समझते हैं, ऐसी दशा है, हमारे काम पर है ऐसा। ऐसी एक दो बात और भी कही आई मेरे सामने, मैं बहुत वर्ष हुआ ना इसमें चलता हूँ। मैं उन्यासी ऐसी ऐसी सात से कथा करता हूँ, सुन तो उन्यासी उन्नीस उन्यासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी अभी तुम बोलता हूँ। हमारे बहुत होते हैं बढ़िया बढ़िया पूछने वाले आते हैं, कई पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कई धमकाते हैं, चलता है काम तुम्हारा। नारायण 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 नारायण।